संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
समय सार परमागम की नौवीं दसवीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें निश्चय और व्यवहार श्रुत केवली की बात कही है। आगे केवली के संदर्भ में भी ऐसा कथन आता है कि निश्चय से जो अपने अकेले आत्मा को जानते हैं वो केवली हैं, और जो लोकालोक को जानते हैं वे व्यवहार से केवली हैं। तो ऐसे दो प्रकार के केवली होते होंगे, एक अकेले निश्चय वाले और एक अकेले व्यवहार वाले। और जैसा वो अपने आत्मा को जानते हैं, वो पर को उसमें कुछ कमजोर धुंधला धुंधला जानते होंगे, क्लियर नहीं जानते होंगे, भेद सहित नहीं जानते होंगे, कोई अस्पष्टता उसमें रहती होगी है? मतलब ये है कि वे स्व और पर को दोनों को बिल्कुल एक सा जानते हैं। फर्क तो ये है कि स्व को स्व जानते हैं और पर को पर, तो ये तो वस्तु का स्वरूप है, स्थिति है। इस परम सत्य को जानना, तो इसमें कहां नहीं जानने वाली बात आ गई। अब सिर्फ एक नियम बनाया था ना अपन ने कि पर के साथ हम किसी भी तरीके के संबंध की बात कहेंगे तो उसे व्यवहार न समझना, खत्म। अब उस नियम के हिसाब से कहा कि वो व्यवहार न का कथन है कि पर को जानते हैं। इसमें नहीं जानने की, कम जानने की, अस्पष्ट जानने की, पहले जानने की, बाद में जानने की, ऐसा कोई भेद है ही नहीं। क्यों, केवली के तो ज्ञान दर्शन दोनों एक साथ ही होते हैं और सफर का प्रकाशन भी एक साथ होते हैं, क्रमशः तो जानना होता ही नहीं है। क्यों, इस बात में कहीं किसी कोई शंका की गुंजाइश दिखती है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने स्व और पर के जानने में जो अंतर जान रखा डाल रखा है, पर वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे व्यवहार कहा है और व्यवहार के बारे में जरा हमारी राय अच्छी नहीं है। क्या, क्यों मोहनलाल जी? तो वो बिल्कुल नहीं, व्यवहार तो सिर्फ एक कारण से कि वो पर जो परिभाषा बताई ना और उपचरित में डाला फिर है? क्योंकि दूर का अलोकाकाश तो कितनी दूर है, एक क्षेत्रावकाश भी नहीं है, किसी भी तरीके से संभव ही नहीं है कभी, इसलिए उसे व्यवहार कहा। अब व्यवहार है वही उपचरित असद्भूत व्यवहार, ऐसा भी हो सकता है। वो तो सद्भूत है, कौन ज्ञात्मा में ज्ञान दर्शन है, उसमें तो कोई अंतर पड़ गया नाम में, इसमें तो नहीं है ना फर्क कि बिल्कुल परम बिल्कुल पक्की सच्ची बात है फिर भी व्यवहार कहा। तो एक ये अलोकाकाश मेरा है, स्त्री पुत्र मेरे हैं, मकान जायदाद मेरे हैं, ये परम असत्य बात भी उसी ने से जिनवाणी में कही है। अब ये जो खतरा है, ये सावधानी आप नहीं रखेंगे तो समझ लेना कई गाड़ी काम से। इसलिए आप इसे समझना, मैं ज्यादा चर्चा इसकी नहीं करना चाहता हूं। मैं केवली के आधार पर यहां श्रुत केवली की बात करना चाहता हूं कि जैसे केवली केवल ज्ञान से स्व को जानते हैं और केवल ज्ञान से पर को जानते हैं, और उनका स्व का जानना निश्चय कहलाता है और पर का जानना व्यवहार कहलाता है। वैसे केवल ज्ञान में तो निश्चय व्यवहार लगते ही नहीं, हमने अपनी तरफ से लगाए हैं उसमें। तो ऐसे ही श्रुत केवली स्व और पर को जो जानते हैं तो पर का जानना व्यवहार कहलाता है, स्व का जानना निश्चय कहलाता है, लेकिन जानने में कोई अंतर नहीं है। अब थोड़ा एक कदम आगे, जो द्वादश अंग के पासी हैं, तो वे यदि उन्हें द्वादश अंग के पाठी तो हुए और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा को नहीं जानते हैं वे, तो फिर वो व्यवहार सुख केवली कहलाएंगे और निश्चय नहीं कहलाएंगे, ऐसे होगा ना? और आत्मा का अनुभव हुआ तो वे निश्चय सुख केवली कहलाएंगे, वो द्वादश अंग के पाठी नहीं है, वो जो शेर हो गया था और कोई दुष्मासम घुसंतो वाले हो गए थे। तो ये नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो द्वादशांग का पाठी होगा वो गारंटी से सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि द्वादशांग का पाठी होता ही नहीं, चाहे राष्ट्रपावन में लिखा हो चाहे किसी ने भी लिखा हो, भगवान महावीर यहां आके कहें तो भी उसको बात को नहीं मानना कि द्वादशांग का पाठी हो सम्यक दृष्टि। अभी यार निकाल लोगे ना सब बागम धरोगी, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो वहां सब बागम धरोगी का क्या अर्थ करना, क्या इसका नाम है आगम की श्रद्धा। सब्बागम धरोगी का 11 अंग और 9 पूर्व इतना अर्थ करना कि जितना द्रव्य लिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि है और वो इतना ज्ञान जिसके हो जाता है अधिकतम, तो उतना ही अर्थ करना। द्वादश अंग लिखा हो चाहे जो कुछ लिखा हो, चाहे सब्बागम लिखा हो चाहे कुछ लिखा हो, क्योंकि संक्षेप कथन में ऐसा कथन होता है। या तो हमें डिटेल खोल के बताएं, अति लंबी लंबी बातें करने की हमें समय नहीं है, तो हम जानते हैं तुम कितने ही बड़े विद्वान बन जाना लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अब कितने ही बड़े विद्वान बन जाना, मैं टोडम जी के बराबर बन जाना फिर भी, और कांजी स्वामी के बराबर बन जाना फिर भी, क्या मतलब कितने बड़े का मतलब क्या है? बड़े बड़े विद्वानों के तो हमने इनके ही नाम सुने हैं, क्यों? मतलब आत्मा के अनुभव के बिना जितना अधिक ज्ञान हो सकता है उतना, और वो उतना बड़े में 9 अंग 11 अंग और 9 पूरा। असलियत में ऐसा है, मुझे ज्यादा डिटेल का नाम माम ख्याल में नहीं है, लेकिन मैं ये बताता हूं कि ये 11 अंग और 9 पूर्व में वो आत्मा का जो जो अपन त्रिकाली ध्रुव पर से भिन्न पर्याय से भिन्न वो बात नहीं है। वो कोई कौन सा दसवा पूर्व और उसका कोई अंश और उसका एक प्रकरण विशेष है, इसलिए 9 पूर्व बोलिए। तो असल में वास्तव में उसने वो तो पढ़ा ही नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा उसने वो भी पढ़ लिया और उसे नहीं हुआ। अभी तुम जैन धर्म के कितने बड़े विद्वान बन जाना, गोमरसा धबला और महाधबला के टीकाकार और कितने बड़े, आप समझेंगे ना आपने, और समय सार खोल के ही नहीं देखा हो, प्रतन सार खोल के ही नहीं देखा हो, देखा हो तो मात्र का तार और माया तार में उलझ के रह गए हो, अपदेश सुत्त मध्यम में उलझ के रह गए हो, अपदेश का नहीं है, सुत्त नहीं है, संत नहीं है, और जिसमें एक एक गाथा की एक एक शब्द पे लड़मरे हो, लेना नहीं देना नहीं, बाकी समय सार पूरा क्या कहता है उसमें ध्यान नहीं दिया हो, तो वो तो नहीं पढ़े के बराबर ही है। अब थोड़ा एक कदम और आगे, जो व्यवहार सुत केवली होगा वो गारंटी से निश्चय सुत केवली होगा। द्वादश अंग का पाठी होगा और आत्मानुभवी नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठी कल्पना करने से क्या लाभ है। देखो कुछ लोग क्या कहते करते हैं, एक महात्मा जी यहां बैठे हैं, एक गाय वहां से भागते भागते गई है और पीछे पीछे कसाई दौड़ता आ रहा था, और कसाई ने महात्मा जी से पूछा कि गाय इन दो रास्तों में से किस रास्ते पर गई है, दो रास्ते से जाते थे ना, तो यदि वो सत्य बता देते तो गाय को पकड़ के ले जाके वो काट देता, तो हिंसा का पाप होता, और यदि झूठ बता दें तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा तो गाय बच जाएगी। तो बोलो वो झूठ बोलना ठीक है कि गलत, वो झूठ बोलना सही है, पर ऐसी बेवकूफी की बातें करते बहुत पंडित आपको मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप, इसमें क्या बेवकूफी है, यानी तू किसी ना किसी तरकीब से झूठ बोलने को अच्छा बताना चाहता है, तेरी नीयत खोटी है। यानी झूठ बोलना भी किसी पोजीशन में धर्म हो सकता है, आप समझे ना, ये सिद्ध करना चाहता है, और ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए कहता हूं बेवकूफ में उसे। कहा भाई उदाहरण तो हमने दिया था। हाँ आपसे तो हमने नहीं कहा, हमने आपसे, हमें पता भी नहीं कि आपने कहा था। आप अपने माथे पर लेने की कोशिश नहीं करना। और ये नकली उदाहरण खड़ा किया, ऐसा कभी कहीं हुआ हो तीन लोगों तीन काल में तो केवली से पूछ लेना। बस उसने अपनी कल्पना से उदाहरण खड़ा किया और आप उसको झूठ बोलना सही हो सकता है, बस ये सिद्ध करना है। तीसरी बात, क्यों जी, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ये बताना जरूरी है कि इधर गई के इधर, कि सत्य बोलना और झूठ बोलना दोनों जरूरी है क्या? चुप रहने का एक रास्ता तीसरा नहीं है क्यों? वो चुप नहीं रह सकता है क्यों सर? तो चुप रह के क्या करेगा? वो तो मानेगा नहीं सामने वाला, तो बोलेगा कि भाई मैंने देखा नहीं, तो फिर ये झूठ हो गया, क्योंकि देखा तो है। अब बोलो अब क्या करें मनीष? अरे इंदिरा गांधी का जीवन चरित्र पढ़ लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा इसका जवाब। क्या? कि जब वो सहाय आयोग में देने जाती थी जवाब, हजारों प्रश्न पूछते थे, ए सुमन भाई तुम्हारे सहाय गुजराती महाराज, तो वो कहती थी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। कोई कानून हिंदुस्तान भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न कोई पूछे तो सामने वाले को उत्तर देना ही पड़े, ये कोई बाध्यता नहीं है कानूनी। इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूं क्या? नहीं, खत्म। 1000 बार उसने ये बोला तो सामने वाले वकील ने, वो भी लेखी मेखी कौन था, जरा बहुत उठल पटक कही, तो इनके वकील ने कहा खड़े होकर के कि साहब इन्हें आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? कि जवाब नहीं, कि मैं कह रहा हूं ना कि आप क्यों परेशान, नहीं हो सकते हैं ना जज साहब ना आप, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने बहुत कानून पढ़ा है और तुम्हें मेरे पास अगर 10 साल कानून पढ़ना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के वकील ने उस वकील से कहा कि कानून किसे कहते हैं, तुम्हें 10 साल मेरे पास आके पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो मैं कहता हूं कि क्या जरूरी है वो उत्तर देने को बाध्य है। अब क्या कहना चाहिए बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, उसे ये उत्तर दे देना चाहिए ना, कि मैं कहता हूं ये उत्तर देने के लिए भी वो कहां बाध्य है? वो अदालत में तो इतना उत्तर देने के लिए बाध्य भी है क्या? लोकसभा में प्रश्न किया कि पाकिस्तान की सेना इतनी इतनी तगड़ी है, तो अपनी सेना में कितनी क्या क्या चीजें हैं जनता डिटेल जानना चाहती है, इसलिए उसे थोड़ा विश्वास जागृत हो, ये प्रश्न का जवाब देना था। तो नेहरू जी से पूछा तो उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि देश के हित में इस प्रश्न का उत्तर देना देश के हित में नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कितनी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा आप तो टालते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। कौन कहता है उत्तर नहीं देते हैं? ये क्या है जो दिया है, जो अभी आपको दिया है वो क्या है? क्या इंदिरा गांधी ने मानो क्या कहा था कि मैं बाध्य क्यों नहीं हूं? अब क्यों नहीं है बाध्य? कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये पूछा कि जब आपने इमरजेंसी लगाने का तय किया तो किस मिनिस्टर ने क्या कहा था? माने जगजीवन राम ये कहते फिरते थे कि मैंने तो विरोध किया था कि इमरजेंसी मत लगा। कैबिनेट की मीटिंग में इंदिरा गांधी, वो कहते कैबिनेट का निर्णय है, सर्वसम्मति से कैबिनेट ने पास किया, तो मेरे पर कोई केस कैसे चल सकता है? चले तो कैबिनेट पे चले। समझ गया? कैबिनेट समझते हैं एक हाई, जो वरिष्ठ मिनिस्टरों का एक ग्रुप होता है जो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए जाते हैं उसे कैबिनेट बोलते हैं, वो होती है। तो कैबिनेट में निर्णय है, वो कह के कैबिनेट का निर्णय है, मेरे से क्यों पूछते हो? तो आप बताइए ना, किसी ने विरोध किया था क्या उस वक्त कि वहां पर ये पहले प्रतिज्ञा ली जाती है कि इसकी गुप्तता को कोई भंग नहीं करेगा? तो कोई कहता हो कि उसने विरोध किया है तो उस पर मुकदमा चलाओ कि उसने उस नियम का भंग किया, तो जेल में उसे डालो। उस वकील ने कहा, कोई आगे कहे कि मैंने विरोध किया था, सर्वसम्मति से पास हुआ, तुम्हारे साइन है ना उस पर, तो झगड़ा खत्म। और तुमने विरोध किया था तो सबसे पहले तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। कौन से अपराध पर? कि तुमने गोपनीयता भंग की। तो मैंने जब गोप राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी ना, तो गोपनीयता की कसम खाई थी। और तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो सब गोपनीयता को भंग करने वाले हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकती। तो जब इनने दीक्षा ली थी तब उनने कोई कसम नहीं खाई थी कि नहीं दुनिया वालों के हर प्रश्न का जवाब देता फिरूंगा? क्यों? मैंने कितना आर्टिफिशियल उदाहरण, जनता फंस जाती है ऐसे ही। कोई वो द्वादश संघ का पाठी हो, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हो, लेकिन ऐसा होता ही कहां है? बताओ ना कहां जगह, कौन से शास्त्र में होता है? चल लिखा है कि होए तो लिखा ना, होता तो नहीं है। क्यों? ये तो उन्होंने अंदाजा लगाने की बात कही, मैं भी एक नहीं 25 बातें बता सकता हूं। और सुनना है इसको। तीन लोग को ना जू खाए और मिटे ना भूख कणा ना लहाए। तीन लोग में कहां कहां अनाज पैदा होता है? स्वर्गों में कौन सा अनाज पैदा होता है? होता होगा तो नरकों में कौन सा होता है? सर्वा सिद्धि में क्या होता है? कोई अनाज तीन लोक में नहीं, अकेला सिर्फ मध्य लोक में होता है, वो भी पृथ्वी पे। और पृथ्वी में 3/4 समुद्र है, पानी है, और 1/4 पृथ्वी है। और उस पृथ्वी में कितनी पहाड़ हैं, नदियां हैं, मकान हैं, शहर बसे हुए हैं, कितने से हिस्से में, तीन लोक के अनंत में भाग में खेती होती है। क्यों? ये कल्पना लोक की उड़ान नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं क्या करें? तो नहीं, लिखा है ना छाला में, लिखा है तीन लोक में, तो स्वर्गों में अनाज पैदा होता ही होगा, रिसर्च की जानी चाहिए। है ना ये पागलपन। अरे भाई, उनने को जो मध्य लोक में अनाज होता है उतने खाने की बात भी नहीं है, उतना भी उसके पेट में नहीं बनेगा। सिर्फ तुम्हें अंदाजा लगवा रहे हैं कि बहुत भूख का दुख है, बस तुम, क्योंकि तुम्हें दो रोटियों का दुख भूख लगती है, पर जब नहीं मिलती है तो तुम तड़प जाते हो, बस तुम उससे अंदाज लगाओ, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है उसका। अनेक तुम अपना दिमाग लगाओगे तो ऐसे बहुत, अभी तो मैंने दादा को इनको निकाल के बताया था, मैंने अभी लिखा भी है प्रचंड सार की टीका में। क्या लिखा है भाई जी? एक लिखा, 1,00,000,00,000 भव में भी क्या है, सत सहस्य कोडियो तपश्चर्या करे तो उसके जितने कर्म झड़ते हैं अज्ञानी के क्षण में ही उतने, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति से उतने झड़ जाते हैं। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आपने? अब एक जगह लिखा, ये 100,000,00,000,000 सत सहस्र करोड़ कितने हो गए थे, तो 1,00,00,000,00,000 हो गए। और दूसरी जगह लिखा कि अकेला सहस्र करोड़ 1,000,00,000,000, तो 1,00,00,000,000 में 1,000,00,00,000 में कितना फर्क है? बोलो, लड़ो, कौन सकता है? मेरा मतलब समझ गया ना, इतना फर्क है। और छाला में क्या लिखा है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के। तो यहां कोटि जन्म तप तपे, तो यहां करोड़ जन्म लिखा, वहां 10 करोड़ लिखा और वहां 100 करोड़ लिखा, बोलो तीन में से कौन करोड़ लिखा? सब सहस्त्र कोड़ी हो और वहां शायद बरस लिखा, क्या लिखा अभी नहीं है, एक जगह बरस लिखा एक जगह भव लिखा। ये देख कितने झगड़ा, आप क्या करें, क्या माने क्या माने, कुछ नहीं मानो। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अज्ञानी के करोड़ नहीं, अनंत भव भी वो तप करे तो भी एक कर्म झड़ता नहीं है। ये उतने कर्म झड़ने का सवाल कहां है? और इनके त्रिगुप्त इतने अंतर्भूत में सब झड़ जाते हैं तो उनसे तुलना ही कहां होती है? और ये लिखा ना झड़े जे झड़े ते, उतने झड़ने की बात करते हैं, समझ में आ रहा? तीसरी बात कि इतने भव भव लिखा ना, और उसने भव लिखा तो तप तो होता है सिर्फ मनुष्य गति में, क्योंकि साधुओं के तपस्वियों उन्हीं को ही कहा जाता है ना, तुमने उपवास कर लिया उसका नाम तप नहीं है, देव गति में तो तप होते ही नहीं है, सौते गुण स्थान से आगे नहीं होते, नारकी में भी नहीं होते हैं, चरण में भी पांच में से आगे नहीं होते, मनुष्य गति में होते हैं। और मनुष्यों के भव 2000 सागर में कितने मिलते हैं? 48 2400 मुफ्त में ही है अपर्याप्त तक के। अब उतने भव मिलेंगे तो इतने भवों तक करे तो इतने भव अब समझ लो कितने काल में होंगे, फिर नवोद में जाएगा, फिर वहां अनंत काल रहेगा जो भी है, फिर वहां से निकलेगा। गुरुदेव पिता में कल परसों आया था, अनंत भी दो तरह के होते हैं, एक बेअनंत जिनका अंत हो जाता है और एक बेअनंत जिनका अंत नहीं होता है, सुना था? अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत है लेकिन उसका अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दफे सम्मत दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाए तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर द्वारा सम्मत दृष्टि बनके वो गारंटी से मुक्त जाएगा, यही है ना? तो अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत है तो अनंत कहीं अंत नहीं आया तो फिर कभी नहीं जाएंगे, अर्थ हो जाएगा ना, आएगा अंत आएगा क्या नहीं उसका? चौथी बात कि वो जो बरस लिखा है वो सही है कि भव सही है? भव तो यहां कट गया क्योंकि इतने भव नहीं होते ना मनुष्य के भव, और बरस तो एक मनुष्य भव में 1 करोड़ भव भी हो सकते हैं और 10 करोड़ भी हो सकते हैं और 1,00,000 करोड़ भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो भैया इन दादा इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझ लेना है बस, ज्ञान ही के ज्ञान की सम्यक ज्ञान की महिमा बहुत है, बस इतना ही अर्थ उसका समझना, कुछ ज्यादा डिटेल जमे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? तो ऐसे प्रकरण आगम में 1,000 जगह मिलेंगे, तो घबराना नहीं, अपना बुद्धि और विवेक का काम करना। अपने जो जैन समाज में नई साधुओं की परंपरा चली है ना, तो उनमें शांति सागर वीर सागर ये अपने थे ना सबसे पहले, तो भाग्य से अपने विद्यालय में भी विद्यार्थी पढ़ने आए थे, एक का नाम था शांति सागर और एक का नाम था वीर सागर। क्योंकि शांति सागर वीर सागर क्या बात करते हुए तो हमारे यहां पढ़ते, उन्हें तो हमने पढ़ाया, क्यों? अब जो नए निकले विवेक सागर लेकिन वो वैसे सागर नहीं है जी विवेक नाम है और सागर गांव का नाम है इतिहास का भी खोज शोध करेगा क्यों तो ये लिख सकता है डॉक्टर हुकुमचंद भारेल के पास में शांति सागर वीर सागर और विवेक सागर में अध्ययन किया था, इतने बड़े विद्वान थे इन सबको ये? है ना पत्थरों से खोज करने वालों की खोज ऐसी ही होती है, है? तो कुछ पता तो होता नहीं है कि एक पत्थर में कुछ लिखा निकल आया, बोले उनके लिए भगवान की वाणी हो गई, सर्वज्ञ की वाणी का उन्हें कुछ पता नहीं है। तो विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपनी बात कर रहे हैं ना कि देखो कोई भी द्वादशांग का पाठी मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं, इसलिए जो व्यवहार से श्रुत केवली है वो निश्चय से श्रुत केवली तो है ही। अब उल्टा लगाओ कि जो अपने आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवली, यदि यही परिभाषा सही है और उसमें व्यवहार केवली की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई निश्चय श्रुत केवली हो व्यवहार श्रुत केवली नहीं हो। क्यों समझी तो हल्लाखों है कि नहीं ऐसा है नहीं, तो उधर से यहां की व्याप्ति घटती है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां धुआं अवश्य होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वहां व्याप्ति उल्टी घटाई जाती है। समझिए ना आपने, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है, यहां तो ऐसा है ही नहीं, दो तरफ से घटती है, दोनों का अभिनव भाव है। फिर भी आप मान लो तो जो जो निश्चय संबंध दृष्टि निश्चय श्रुत केवली माने संबंध दृष्टि होगा उन सबका व्यवहार केवली होना जरूरी नहीं, व्यवहार श्रुत केवली होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यवहार श्रुत केवली होगा उसका निश्चय केवली होना अत्यंत जरूरी है। ऐसी व्याप्ति इधर से घटेगी, आप तो उसकी छुट्टी करना चाहते हैं। अब जानते हैं फिर वो जो शुद्ध ज्ञान होता है तो मनुष्य में हमें तुम्हें तो हो ही नहीं सकता द्वादश अंग के पाठी, एक तो मुनिराजों को होता है, एक स्वधर्म चौथे अनुष्ठान में भी होता है, लेकिन स्वधर्म मानो द्वादश अंग का पाठी होता है, तो चौथे अनुष्ठान में भी द्वादश अंग के पाठी होते हैं लेकिन मनुष्य में नहीं। अब वहां जी चौथे के नीचे होते हैं कोई शुद्ध केवली बताओ कहीं शास्त्र में निकलते हैं तुम्हारे गुणस्थानों के हिसाब से, चौथे से नहीं होते तो सब ऋषि तो है ही ना, वे ये नक्की हो गया ना। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी कथन है तो सिर्फ महिमा वाचक है, मैंने ये लिखा है और कौन सी गाथा है 200 कुछ गाथा है प्रचंद साल की, और उस गाथा के मैं बस भव सहस्र कोटि यो है ना, कर बोलो जोर से बोलो। अब इसमें तो बरस लिखा और छड़ा की पढ़ा उसमें जन्म लिखा भव, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जन्म और भव में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जी, हम तो ठोके जाते हैं देखो जय लिखा जय लिखा इसमें लिखा इसमें लिखा, लेकिन भैया जन्म लिखा उसमें भव लिखा उसमें बरस लिखा, बरस तो एक बरस में ही एक बरस होगा, समझ गए ना, लेकिन भव तो एक बरस में भी अनंत हो सकते हैं, निगोदी आगे होंगे लेकिन मनुष्य के भी गिनोगे तो भी मेरे कहने का मतलब अनेक भव हो सकते हैं। 84 लाख पूरब की आयु थी ऋषभ देव की, समझे ना, तो उसमें बरस तो इतना ही थे 84 लाख पूरब, ख्याल में ना, तो ये बहुत जरा सी जाओगे तो ये व्यवहार के जो वचन होते हैं महिमा वाचक वचन बोलते हैं सबको, पर आप एक शब्द को ये महिमा वाचक कथन है बस खत्म, इसको ऐसा गणित के हिसाब से ऐसा नहीं मिलाया जा सकता है। क्यों ये तो वैसा ही कथन है कि देवताओं में ये तय हुआ कि देवता तो हिंदू में 33 करोड़ है और सबकी पूजा होनी चाहिए, वो अपने अभी कम थोड़ी है, 24 है फिर 20 है फिर पिछली 24 ही फिर अगली 24 ही फिर 772 है फिर अखी तुम चेता लेंगे कितने कितने, अब किसकी करें कब करें, बहुत बहुत चक्कर है ना। तो वहां झगड़ा हुआ कि सबसे पहले किसकी हो बस कम से कम एक नक्की तो हो जाए, तो तय हुआ कि सब लोग पृथ्वी का चक्कर काटें परिक्रमा देके, और जो पहले आ जाएगा देवता ये भी परीक्षा में बैठे तो उनकी पूजा पहले से होगा, मेरी पूजा पहले हो इसलिए सब भागे। अब कोई का तो मालूम शंकर जी का नादिया सवारी थी और किसी की वो बेनते क्या बोलते हैं, बाज सवारी है किसी की कुछ है, और गणेश जी की तो चूहा है। अब चूहा उनके साथ दौड़ेगा तो पीछे ही ले जाएगा ना। तो उसने कहा गणेश जी ने अपने शंकर पार्वती की परिक्रमा दी और वहां आके बैठ गए। जब लौट के लोग आए तो सबसे पहले में गणेश जी मिले, कि गणेश जी जीत गए। और वो जो थे ना कौन न्यायाधीश लोग बैठे थे जजेज, उनने फैसला दे दिया कि गणेश जी जीत गए, इसलिए गणेश जी पूजे जाएंगे। और उस दिन से गणेश जी पहले पूजे जा रहे हैं, है ना। क्यों ये भी वैसे काम नहीं है कि तय हुआ सारी पृथ्वी और माता, पर ये सिर्फ कथन सिर्फ इस बात का है कि माता पिता पृथ्वी से भी महान है। और जो अपने माता पिता के चक्कर काटता है, करता रहता है, उससे ज्यादा महान काम कोई नहीं है। किसी बहुत समझदार के दिमाग की उपज है, हो सकता है कि उसके बच्चे उसकी उपेक्षा करते होंगे समझ में आ रहा है आपकी बना उसकी खुद की भी समस्या हल हो गई और भी लाखों लोगों की समस्या हल हो गई। समझदार बहुत था वो, क्यों? अरे भाई ये तो सिर्फ माँ पिता की प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए ही वो कहानी गनी गई है, इससे ज्यादा उसका कोई अर्थ नहीं है। समझे ना, वो तो सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए कि माता पिता की क्या इज्जत हमारी दृष्टि में होनी चाहिए, इसके लिए वो कहानी गढ़ी गई है, इससे ज्यादा उसका अर्थ निकालना। ऐसी अपने यहां भी बहुत सी कहानियां मिलेंगी बिल्कुल इसी स्टाइल पे, कि जिस चीज पे को ज्यादा महिमा देना चाहते हैं ना, जैसे मैंने ये बताई ना सब तीन लोग का अनाज खाया फलाना, ये सब ऐसे ही कथन है और आगम में ऐसे कथन होते हैं। जैसे कोई ये अन्याय है, झूठ है, उनने हमारे साथ छल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी बात हो गई ना, अपने थोड़ा टीका आप पढ़ लेते हैं। जो श्रुत ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह परमार्थ कथन है। और जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह व्यवहार कथन है। अब यहां विचार करते हैं कि उपयुक्त सर्व ज्ञान माने द्वादश अंग आत्मा है क्या अनात्मा। अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ अनात्मा तो आकाश आदि पांच द्रव्य हैं, किंतु उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है। अतः अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यही सिद्ध होता है। इसलिए यह सहज ही सिद्ध हो गया कि सर्वश्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। तो निश्चय विभाग दो ही हो गए, सर्वश्रुत ज्ञान को जाना तो आत्मा को जाना, आत्मा को जाना तो सर्वश्रुत ज्ञान को जाना। अब द्वादशांग को सार यही है, यही जिनवाणी उचलो है, तो हमारा प्रयोजन तो सिद्ध हो गया ना। द्वादश अंग पढ़ करके भी आत्मा को जानते हैं, तो हमने आत्मा को जान लिया। ऐसा सिद्ध होने पर पारमार्थिक तथ्य सहज ही फलित हो गया कि आत्मा को जो जानता है वही श्रुत केवली है। इस दोनों ही में वही निश्चय वही व्यवहार वो कहते हैं, है ना। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला जो व्यवहार नय है कि श्रुत ज्ञान और वो ज्ञानी, उससे भी मात्र परमार्थ ही कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है ये बताने का इसका उत्तर है। उसने प्रश्न था ऐसे है, क्यों तो अगर हम आत्मा को जानो अपन भाई कहते रहे, सुनना साहब हमने ये मान ली आत्मा के जाने बिना आनंद सुख की प्राप्ति नहीं होगी, रंच मात्र भी दुख घटेगा नहीं, नरक निबोधन आनंद काल तक भटक में। अब खत्म करो ना इस बात को, हमने मान लिया ना कि आत्मा का जानना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा। और हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल जम गई और हमें स्वीकृत है। अब और लंबा भाषण देने से क्या जरूरत है, अब तो तुम बताओ कि आत्मा को जाने कैसे, आत्मा को कैसे जाने, आत्मा को जानो देखो कोई ये मत समझना कि मैं कोई व्यंग कर रहा हूं कि मजाक उड़ा रहा हूं, मैं एक सत्य का मेरी मजाक की शैली में प्रतिपादन करने का मेरा तरीका है। आचार्य ने ये नहीं कहा कि आत्मा को कैसे जाने, आंख बंद करके बैठ जाओ नाथ को देखो, ये कहा कि समय सार पढ़ो, दाद संग पढ़ो, कहा गया नहीं कहा। उपायंतर क्या है, उपायंतर क्या है, क्या लिखा, जो जानते तत्वार्थ को, जो जानते कहा ना वही बात, जो ध्यान करने की बात कहते हैं वो भी आत्मा को जानने के लिए ही कहते हैं। हमारा इतना ही फर्क है कि ध्यान आत्मा को जान लेने वालों को होता है, समझना, वो आत्मा को जानने के लिए ध्यान की बात करते हैं। जानने के लिए तो स्वाध्याय करना चाहिए, देखा ना। अब क्यों, ध्यान की परिभाषा क्या है, जानना वह ज्ञान है, और उसी चीज को निरंतर जानते रहना उसका नाम ध्यान है। तो ज्ञान के रिपीटिशन को ध्यान कहते हैं। तो एक दफे जानना वो ज्ञान, और लगातार जानते रहना वो ध्यान। तो तुम्हारे न्याय शास्त्र में क्या कहेंगे उसे, धारावाहिक नाम का दोष, वो ज्ञान का दोष है, सम्यक ज्ञान का है कि नहीं है। अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, लेकिन इतना तो नक्की है ना कि आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है, पर आत्मा को जानते रहना वो ध्यान, बस इसके अलावा कुछ और है। तो फिर वो जानना पहले होगा कि जानते रहना पहले होगा, तो जानने के लिए ध्यान करेंगे कि जानने के बाद ध्यान होगा, बोला। जानने के लिए तो अध्ययन किया जाता है, तो जानते रहने का नाम ध्यान है। और टोटनमल जी ने उसमें लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि जब वो आत्मा का अनुभव होता है तो जितना ज्ञान पहले था उससे कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता है, बाद में जब लौट के आता है ना आत्मा से बाहर निकल के, तो उतना ही ज्ञान होता है जिसे जितना वो पहले जानता था। वहां तो अगली सील लगती है, ख्याल में है ना। तो उन्हें भी श्रद्धा करना चाहिए कि प्रेरणा दी कि नहीं, अब झगड़े में कहां पड़े हम, पर अपने हम ही देखिए, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए। ध्यान क्या है, चारित्र है ना, तो क्या लिखा, सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानी पहले हो और फिर दृढ़ चारित्र लो, है ना, वो चारित्र का भेद है ध्यान। तीसरा, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान तो एक साथ ही होते हैं। और चारित्र में, हालांकि वो अनंतानंदी कसाई के जाने से चारित्र का अंश भी प्रकट हो जाता है, लेकिन तो भी उसको अस्वीकार करके, क्योंकि जादू तो वो है जो माथे पर चढ़ के बोले कि बाहर से दिखे गए ये चारित्र बंत है, उसे चारित्र बंत माना है, अंदर से नहीं माना। क्यों, अनंत मंदिर गई तो चारित्र हुआ कि नहीं हुआ, अब मान लेते तो क्या तकलीफ थी, सारा व्यवहार बिगड़ जाता। कैसे व्यवहार बिगड़ जाता, बोलो, फिर चक्रवर्ती संयमी कहलाते, 96,000 शादियां करते, 96,000 घोड़े पर चढ़ते, लड़ाई लड़ने जाते, भाइयों पर चक्र चलाते, और चारित्र बंध कहलाते। बोलो व्यवहार बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता, क्यों अंदर हुआ हो होने दो, कहना तो व्यवहार है ना, हम तो उसे चारित्रबंध बाद में कहेंगे। तो जो इतना चारित्र हुआ उसका क्या कह रहे हैं अभय जी, कि क्या करना है? क्या हमारे पास क्या है, 2 तोले मटर है और टमाटर 10 किलो है, अब हम मटर और टमाटर का साग बनाए, क्या करें क्या करें, माता मैंने जो पूछ लो ना, टमाटर में डाल दो ना, झगड़ा खेलो, इतना सा चारित्र है, ज्ञान पूरा है, संबंध में पूरा है, उसमें ही शामिल कर दो, उतना कर दिया करुणा नियोग बालों ने, चारित्र होगी अनंतानंदी की तार पे कितनी है ना, उनको दर्शन मोहिनी की सर्व घाती क्यों किया कि नहीं किया? सम्मा दर्शन की सर्व घाती प्रकृतियां कौन है? मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व और नहीं नहीं वो अनंतानंद की चौकड़ी है तो तात्र मोहिनी की और सम्मा दर्शन की सर्व घाती। तो सम्मा दर्शन की सर्व घाती प्रकृति है तो उनका घात होगा तो सम्मा दर्शन पैदा होगा। तो वो उतना जो चारित्र है, उतनी जो आत्मलीनता है, उसको उन्होंने सम्मा दर्शन और सम्यक ज्ञान में शामिल कर दिया और उसका नाम रखा सम्यक ज्ञान है। वो जो अपने 10 दाने डाले ना काय के मटर के टमाटर की सब्जी में, तो सब्जी काय की बनी थी याद भैया? मटर की के टमाटर की? अरे यार तुम तो गजब करते हो। एक होटल में कुछ जीवने गए लोग तो उन्होंने क्या है खाने में कि सब है साहब चपाती है ये है चावल है कि सब्जी क्या है? तो उन्होंने कहा कि आलू और अंगूर की मिली हुई सब्जी है। क्या? कद्दू और अंगूर, कद्दू और अंगूर की मिली हुई सब्जी है। तो उन्होंने कहा कद्दू कितना होगा उसमें, अंगूर कितना होगा? चादा आधा। समझ तो बहुत कुछ आधा कद्दू और आधा अंगूर। जब खाने में बैठे तो कद्दू ही कद्दू दिखे, तो कद्दू इतना बड़ा तो उसका आधा। तो ठगना हो किसी को तो उसे ऐसा बोलना चलिए अंगूर की सब्जी है, समझे? मैं बोला था ना मटर की सब्जी, टमाटर तो 2 किलो, चाय दाने मटर की सब्जी है। बेस्ट एंड फिलोसफी है ना दादा, आपने भी पढ़ी होगी, उसमें एक बहुत मार्मिक वो शब्द आता है, वहां 4 वाक्य होते हैं, ए यू आ ए आ, वो वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं। तो उसमें ऐसा है 100 आदमी हैं और 99 आ गए तो भी उसके लिए ये बोलेंगे कुछ आ गए, और 1 आया तो भी उसके लिए बोलेंगे कुछ आ गए, 100 ही आ जाएंगे तो बोलेंगे सब आ गए, तो कोई नहीं आएगा तो उसे बोलेंगे कोई नहीं आया। तो 3 बात हुए ना, 4 1 बात और होता है ऐसा। तो वो कहते हैं कि वो जो वो बीच वाला बात बहुत खतरनाक है, उन्हें कुछ आ गए, 1 आया हो भी तो भी कुछ आ गए, और 99 आ गए हो तो भी कुछ। कहते जब तक पूरे नहीं आए तब तक सब आ गए नहीं कह सकते, और जब 1 भी बैठा हो तो कोई नहीं आया नहीं कह सकते, समझे ना? ऐसे बात कहते हैं उसमें। तो ऐसी बात यहां है कि आप कैसे कह सकते हो कि और वो चीज नहीं है, लेकिन उसको आचार्यों ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में शामिल कर लिया, सम्यक चारित्र नाम नहीं दिया, वो सम्यक चारित्र ध्यान को बोलते हैं। ध्यान तो के बिना तो आत्मानुभूति होती नहीं है, वो जितना भी लगता हो एक समय जो भी होता हो। क्यों? तो हमने कहा ना कि हमारी इस सब्जी में चारित्र भी मिला है थोड़ा सा, तो वही मिला है, तो वही वो आत्मानुभूति वाला साथ। जैसे जब चारित्र नहीं कहते तो ध्यान कैसे कह सकते हैं? जब उसे भी चारित्र नाम नहीं दिया, समझना मेरा, तो इसका नाम ध्यान कैसे दे सकते हैं? तो इसका नाम हम आत्मानुभूति कहेंगे और कोई भी नाम देंगे, सामायिक जो भी नाम देंगे वो देंगे, लेकिन वो चारित्र करने अब हमने कह दिया चरित्र मुखे बस लेस न संयम। जब संयम लेस नहीं है तो ध्यान भी नहीं है। क्यों? कि ध्यान तप है और संयम चारित्र है। आप जानते हैं संयम पहले होता है और तब बाद में होता है। ये भी बहने समझ लेना, उपवास उपवास तुम्हारे कुछ नहीं है, संयम हो ना अनुवृत महावृत महावृत तब तप होता है। तप में और संयम में क्या फर्क है? जो मुनियों को अनिवार्य हो वो संयम, जो ऑप्शनल हो वो तप। तप करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन संयम में 28 मुड़े तो 27 नहीं चलेंगे, आप समझिए ना। तो वो तो तपस्या संयमी के होता है तब, तो जब संयम नहीं है तो तप कहां से आएगा? सब तप कहिए जा रहे हैं, और तप के जब वो बोले आए क्या फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए तब में, वो जो रामलीला मैदान में इनको सर्टिफिकेट मिल गए तपस्वियों के सम्मान में, इनका सम्मान हो गया। स्वाध्याय भी तप है, हम कर करके जिंदगी भर हो गई, कम से कम तपस्वी के नाते तो कोई सम्मान हमारा नहीं हुआ आज तक। तो आप समझिए ना, उसका ध्यान नाम क्यों नहीं है भाई कुमार जी, सोचो गंभीरता से सब बात ख्याल में आएगी। पर कोई इतनी से समझने का, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं। यदि आपने पक्ष विपक्ष के बाद में किसी ने चिंतन किया और उसको आने से प्रतिबंधित किया तो बहुत बड़े घाटे में ये जनता रहेगी। मेरा पूर्ण समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि जो इसके विरुद्ध जाएगी, जो उसके विरुद्ध जाएगी, वो इसके विरुद्ध जाए, मेरे बाप के विरुद्ध जाए, लेकिन यदि वो सत्य है तो वो चिंतन बाहर आना चाहिए। क्यों? चक्रवर्ती चक्रवर्ती तुम्हें मरे तो नियम से नरक जाए। शांतिनाथ भी चक्रवर्ती थे, अभी शांतिनाथ से गोली नहीं लगेगी, और लगेगी तो लग जाए। परम सत्य है क्या नहीं? बहुवार परिग्रस्तम नायस कुमार का सायुषा, ये सत्य है क्या नहीं? कि तत्वा सूत्र में से सूत्र को निकाल दें, कि इसका अर्थ करना बंद कर दें। बोलो, कहने का अर्थ ये है कि वो जो बात कही जा रही है उसकी सत्यता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि कदाचित आपको ऐसा भ्रम है भी कि किसी के राग द्वेष से कही तो उसका राग द्वेष उसके साथ, उसका पुण्य पाप उसके साथ, नरक में वो जाना होगा, वो जिसके पास जाएगा सो जाएगा, जो होगा उसका हो जाएगा, लेकिन वो बात की सच्चाई पे विचार करना चाहिए। और यदि आपको सत्य लगे तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं लगे तो नहीं करना चाहिए, और उस पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो जिनवाणी के साथ धोखा होगा, सर्वज्ञ की वाणी के साथ धोखा होगा। ये रहस्य आपके ख्याल में आया तो आपने जगत के जीवों को क्यों नहीं बताया?